सुबह की पहली किरणों के साथ ही गुरुकुल का शांत वातावरण मानो टूट चुका था। रात की उस भयावह घटना ने पूरे परिसर को हिलाकर रख दिया था। हर ओर बेचैनी थी, हर चेहरे पर भय और अनिश्चितता की छाया साफ दिखाई दे रही थी। विशाल प्रांगण, जहां सामान्यतः साधकों के अभ्यास की ध्वनि गूंजती थी, आज असामान्य रूप से मौन था। इस अफरा तफरी को नियंत्रित करने के लिए पूरे गुरुकुल में पूर्ण निषेधाज्ञा लागू कर दी गई थी। किसी भी छात्र को अपने निवास स्थान से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। कक्षाएं स्थगित कर दी गई थीं और सभी को सख्त आदेश दिया गया था कि वे अपने कक्षों में ही रहें। बिना अनुमति बाहर कदम रखना दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया था। गुरुकुल के गलियारों में अब केवल प्रहरी और वरिष्ठ साधक ही दिखाई दे रहे थे। उनकी चाल में सतर्कता थी और आंखों में एक गहरा संदेह। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो हर कोई किसी अदृश्य शत्रु की तलाश में हो। इन सब हलचलों से दूर अपने कक्ष के भीतर अर्जुन पद्मासन में बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं, श्वास नियंत्रित थी और उसका मन गहरी साधना में डूबा हुआ था। परंतु उसकी चेतना शांत नहीं थी, वह बार बार पिछली रात की घटनाओं को दोहरा रही थी। उसने वह क्षण याद किया जब उसने आचार्यों की सहायता करने के लिए स्वर्गीय काली अग्नि का उपयोग किया था। एक हल्की कंपन उसके भीतर दौड़ गई। वह जानता था उसने जो किया वह केवल एक सहायता नहीं थी, वह एक जोखिम था। मुख्य आचार्य, उसने मन ही मन सोचा, वे मूर्ख नहीं हैं। उस ऊर्जा को पहचानना उनके लिए कठिन नहीं होगा। उसकी भौहें हल्की सिकुड़ गईं। उसे ये भी आभास था कि केवल आचार्य ही नहीं, वह नकाबपोश साधक भी अब सतर्क हो चुका होगा। जिस प्रकार उस साधक ने युद्ध के दौरान हर ऊर्जा की तरंग को परखा था, उससे ये स्पष्ट था कि वह साधारण शत्रु नहीं था। अगर उसने भी उस अग्नि को पहचान लिया, अर्जुन के भीतर एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया, तो अगला लक्ष्य मैं हो सकता हूँ। फिर भी उसने कोई पछतावा महसूस नहीं किया। धीरे धीरे उसकी मुट्ठियां बंद गईं, परंतु उसका चेहरा अब भी शांत था। मैं पीछे नहीं हट सकता था, उसके विचार दृढ़ होते गए। ये गुरुकुल अभी के लिए उसका एकमात्र आश्रय था। यही वह स्थान था जहां वह अपनी शक्ति को सुरक्षित रूप से विकसित कर सकता था। यदि यह स्थान नष्ट हो जाता तो न केवल उसकी साधना बाधित होती, बल्कि वह एक बार फिर अज्ञात खतरों के बीच अकेला खड़ा रह जाता। और सबसे बड़ा खतरा था नागवज्र तंत्र ग्रंथ। अर्जुन ने गहरी सांस ली। यदि वह ग्रंथ पूर्ण हो जाता, उसके भीतर एक ठंडी लहर दौड़ी, तो परिणाम केवल गुरुकुल तक सीमित नहीं रहते। वह भली भांति समझता था ऐसी निषिद्ध विद्या यदि बाहर चली जाती तो केवल ये गुरुकुल ही नहीं, पूरा राज्य संकट में पड़ सकता था। और तब न जाने कितनी शक्तियां, कितने अज्ञात अस्तित्व इस संघर्ष में कूद पड़ते। अर्जुन की आंखों के पीछे मानो एक नया संसार उभरने लगा, एक ऐसा संसार जहां हर शक्ति के पीछे कोई न कोई छिपा हुआ रहस्य था। उसने धीरे से अपनी चेतना को और गहराई में डुबोया। अभी बहुत कुछ है जो मुझे नहीं पता। उसकी सांसें अब और धीमी हो गईं। और जो मैंने कल देखा, उसके मन में आकाशीय युद्ध का दृश्य कौंधा, वह इस युग का सबसे बड़ा संकेत है। दो आचार्य, एक सैनिक और एक अज्ञात साधक, सबने दिव्यास्त्र का प्रयोग किया था। उसकी आंखों के कोनों में हल्की शक्ति उभर आई। मेरे पिछले जन्म में एक दिव्यास्त्र को सिद्ध करने में वर्षों की तपस्या लगती थी, उसकी आवाज मन के भीतर गूंजी। लेकिन अब वही शक्ति इतनी साधारण कैसे बन गई? कमरे में अचानक गहरा सन्नाटा उतर आया। अर्जुन बाहर से शांत बैठा था, किंतु उसके भीतर प्रश्नों का भयंकर तूफान उमड़ रहा था। अब उसे स्पष्ट समझ आने लगा था, ये संसार, ये युग वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा उसने अब तक सोचा था। और शायद उसके जीवन की वास्तविक परीक्षा अब आरंभ होने वाली थी। उधर गुरुकुल के आंतरिक चिकित्सा कक्ष का वातावरण पूरी तरह भिन्न था, गंभीर, अनुशासित और ऊपर से शांत, किंतु भीतर ही भीतर गहरी चिंता से भरा हुआ। मुख्य आचार्य और दोनों वरिष्ठ आचार्य विशाल शिलाशैयाओं पर लेटे हुए थे। उनके चारों ओर औषधियों की तीखी सुगंध फैली हुई थी। आयुर्वेदिक आचार्य, जिनका ज्ञान पीढ़ियों से संचित था, अत्यंत सावधानी से उनके घावों पर जड़ी बूटियों का लेप कर रहे थे। उनके साथ राजकीय वैद्य भी उपस्थित थे, वे लोग जिन्हें स्वयं महाराज के निजी उपचार का दायित्व सौंपा जाता था। तीनों आचार्यों की स्थिति साधारण नहीं थी। उनके शरीर पर घाव ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो किसी साधारण अस्त्र से नहीं, बल्कि सूर्य के किसी प्रचंड अंश से दग्ध किए गए हों। त्वचा के कई हिस्से काले पड़ चुके थे और कुछ स्थानों पर वह ऊर्जा अब भी हल्की हल्की धधक रही थी, जैसे घाव नहीं बल्कि कोई जीवित ज्वाला हो जो बुझने का नाम ही न ले रही हो। आयुर्वेदिक आचार्य ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, यह साधारण अग्नि नहीं है, ये दिव्यास्त्र की शेष ऊर्जा है। जब तक इसे पुनर्तः निष्क्रिय नहीं किया जाता, घाव भरना असंभव है। उनके शब्दों में चिंता स्पष्ट थी। सामान्यतः ऐसी औषधियां जो दिव्यास्त्र के प्रभाव को शांत कर सकें, अत्यंत दुर्लभ होती थीं, लगभग असंभव। परंतु इस बार परिस्थिति भिन्न थी। महाराज ने स्वयं सख्त आदेश दिया था, गुरुकुल के आचार्यों को किसी भी स्थिति में पूर्ण उपचार मिलना चाहिए। क्योंकि वह केवल राजा नहीं थे, वे इस गुरुकुल के शिष्य रह चुके थे। इस स्थान के प्रति उनका सम्मान और लगाव गहरा था। इसी कारण राजकीय भंडार से वे औषधियां भी मंगवाई गई थीं, जिनका उपयोग केवल युद्धकाल या अत्यंत आपात स्थिति में ही किया जाता था। लेकिन फिर भी घाव पूरी तरह नियंत्रित नहीं हो पा रहे थे। तभी कक्ष का वातावरण अचानक बदल गया। दरवाजे के पास खड़े सैनिक एक साथ सतर्क हो गए और मार्ग छोड़ दिया। अंदर प्रवेश हुआ राजकीय वैद्य प्रमुख राजवर्धन का। उनकी उपस्थिति में एक अलग ही अधिकार था। उनकी आंखें शांत थीं, पर उनमें वर्षों का अनुभव झलक रहा था। उन्होंने बिना समय गंवाए सीधे आचार्यों के पास जाकर उनके घावों का निरीक्षण किया। कुछ क्षणों तक उन्होंने कुछ नहीं कहा, फिर उन्होंने हल्का सा सिर हिलाया। दिव्यास्त्र की शुद्ध ऊर्जा और उसमें किसी अज्ञात तत्व का मिश्रण, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, सामान्य औषधियां पर्याप्त नहीं होंगी। कक्ष में उपस्थित सभी वैद्य एक क्षण के लिए मौन हो गए। राजवर्धन ने धीरे से अपने दाहिने हाथ की अंगूठी को घुमाया। अगले ही पल एक हल्की सी चमक उभरी। अंगूठी के भीतर से एक छोटी पारदर्शी कांच की शीशी प्रकट हुई। उसके भीतर एक नीली दिव्य आभा से चमकती औषधि थी, इतनी शुद्ध कि उसकी रोशनी मात्र से ही वातावरण में एक शांति फैलने लगी। कुछ वैद्य उसे देखकर दंग रह गए। ये तो एक आयुर्वेदिक आचार्य के होंठ कांप उठे, राजकीय अमृत निर्मित रसायन। राजवर्धन ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने अत्यंत सावधानी से उस औषधि की कुछ बूंदें अपनी उंगलियों पर ली और मुख्य आचार्य के जले हुए घावों पर धीरे धीरे लगाना शुरू किया। जैसे ही वह औषधि त्वचा से स्पर्श हुई, एक हल्की सी सस की ध्वनि हुई और फिर अविश्वसनीय दृश्य सामने आया। जली हुई त्वचा, जो अब तक काली और निर्जीव प्रतीत हो रही थी, धीरे धीरे अलग होने लगी, जैसे कोई पुराना आवरण उतर रहा हो। उसके नीचे से नई स्वस्थ त्वचा उभरने लगी। घावों की धधकती ऊर्जा शांत होने लगी, मानो किसी ने भीतर जल रही अग्नि पर शीतल जल डाल दिया हो। कुछ ही क्षणों में मुख्य आचार्य की स्थिति स्थिर होने लगी। राजवर्धन ने वही प्रक्रिया अन्य दोनों आचार्यों पर भी दोहराई। प्रत्येक स्पर्श के साथ उनके शरीर की पीड़ा कम होती गई और ऊर्जा का असंतुलन धीरे धीरे संतुलित होने लगा। पूरा कक्ष स्तब्ध था। जो कार्य कई घंटों में भी संभव नहीं हो रहा था, वह कुछ ही क्षणों में पूर्ण हो गया। राजवर्धन ने शीशी को पुनः अंगूठी में समाहित किया और बिना किसी विशेष प्रतिक्रिया के पीछे हट गए। अभी ये पुनर्तः स्वस्थ नहीं है, उन्होंने शांत स्वर में कहा, परंतु खतरा टल चुका है, उन्हें विश्राम की आवश्यकता है। इतना कहकर वे मुड़े और कक्ष से बाहर निकल गए। बाहर खुले प्रांगण में सेनापति पहले से ही उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। राजवर्धन उसके पास जाकर रुके। सेनापति ने गंभीर स्वर में पूछा, आचार्यों की स्थिति? राजवर्धन की नजरें कुछ क्षणों के लिए दूर आकाश की ओर उठी, फिर उन्होंने धीमे लेकिन स्पष्ट शब्दों में कहा, घाव भर गए हैं, लेकिन समस्या घाव नहीं है। सेनापति की भौहें सिकुड़ गईं। तो फिर, राजवर्धन का स्वर और भी गंभीर हो गया, जिस शक्ति ने ये घाव दिए हैं वह इस युग की नहीं लगती। कुछ क्षणों के लिए पूरा कक्ष मौन में डूब गया। वातावरण अचानक भारी हो उठा था, मानो हवा में कोई अदृश्य भय धीरे धीरे फैल रहा हो। उन्होंने सेनापति की आंखों में गहरी दृष्टि डालते हुए धीमे लेकिन कठोर स्वर में कहा, और यदि वह शक्ति पुनः जागृत हुई? क्षण भर रुककर उन्होंने आगे कहा, तो इस बार केवल गुरुकुल ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र विनाश के कगार पर पहुंच जाएगा। सेनापति ने गंभीर निगाहों से राजवैद्य राजवर्धन को देखा, फिर मौन सहमति में धीरे से सिर झुका दिया। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं अब पहले से कहीं अधिक स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। वे एक कदम आगे बढ़े और धीमे स्वर में बोले, उन्हें चेतना कब तक लौट आएगी? उनकी आवाज संयमित थी, किंतु उसके भीतर छिपी अधीरता और चिंता साफ महसूस की जा सकती थी। महाराज को ये सब तुरंत बताना होगा, और यह भी कि कोई हमारे ही राज्य में, हमारे ही गुरुकुल के आचार्यों पर इस स्तर का प्रहार करने का साहस कर चुका है। राजवर्धन ने कुछ क्षण तक उन्हें निहारा। उनकी आंखों में विचारों की गहराई थी, मानो वे केवल घाव नहीं बल्कि उनके पीछे छिपे रहस्य को भी परख रहे हों। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, होश आने में थोड़ा समय लगेगा, पर अधिक नहीं। उन्होंने धीरे से मुख्य आचार्य की ओर देखा, जिनकी श्वास अब स्थिर हो चुकी थी। ये तीनों ही सप्तचक्र जागृत साधक हैं। इनका शरीर साधारण नहीं, ये स्वयं को शीघ्र संतुलित करने में सक्षम है। मेरा अनुमान है, जैसे ही भीतर की ऊर्जा पुनर्तः स्थिर होगी, ये जाग उठेंगे। सेनापति ने फिर सिर हिलाया, लेकिन उनकी जिज्ञासा अब भी शांत नहीं हुई थी। उन्होंने एक क्षण रुककर अगला प्रश्न किया, और वह शक्ति, वह दिव्यास्त्र किस राज्य से जुड़ा हो सकता है? ये प्रश्न सुनते ही राजवर्धन कुछ कदम चलते हुए कक्ष के एक कोने की ओर बढ़ गए। उनकी चाल धीमी थी, लेकिन हर कदम के साथ उनके मन में कोई गणना चल रही थी। कुछ क्षणों बाद वे रुके। उस ऊर्जा में एक तीव्र रोशनता थी, उन्होंने कहना शुरू किया, ऐसी जो केवल साधारण अग्नि नहीं हो सकती। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, मानो उस ऊर्जा को फिर से महसूस कर रहे हों। वह सूर्य के समान थी, प्रचंड, स्थिर और दाहक। सेनापति की आंखों में एक चमक उभरी। तो सूर्यपुरा राज्य? राजवर्धन ने हल्का सा सिर झुकाया, पर तुरंत उत्तर नहीं दिया। संभावना है, उन्होंने धीरे से कहा, परंतु एक समस्या है।
समस्या? सेनापति ने भौहें सिकोड़ ली। राजवर्धन ने उनकी ओर मुड़कर गंभीर स्वर में कहा,
सूर्यपुरा राज्य की कुछ प्रमुख तकनीकें और कई दिव्यास्त्र वर्षों पहले एक हमले में नष्ट या लुप्त हो गए थे। कक्ष का वातावरण और भी भारी हो गया। यदि यह वही शक्ति है, उन्होंने आगे कहा, तो या तो किसी ने उन खोई हुई तकनीकों को पुनः प्राप्त कर लिया है
एक क्षण का विराम, या फिर यह किसी काले बाजार से प्राप्त किया गया दिव्यास्त्र है।
ये सुनते ही सेनापति का चेहरा कठोर हो गया। काला बाजार, उन्होंने धीमे से दोहराया, तो बात केवल एक साधक तक सीमित नहीं है।
राजवर्धन ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उनकी खामोशी ही सब कुछ कह रही थी।
सेनापति ने तुरंत निर्णय लिया। उन्होंने बाहर खड़े सैनिकों को संकेत दिया। कुछ ही क्षणों में चार सैनिक भीतर उपस्थित हो गए।
तुम चारों, सेनापति का स्वर आदेशात्मक हो गया, तुरंत सूर्यपुरा के लिए प्रस्थान करो। वहां के शस्त्रागार और विद्या केंद्रों में ये पता लगाओ कि क्या हाल ही में किसी दिव्यास्त्र या तकनीक की चोरी, विनिमय या गुप्त लेन देन हुआ है।
सैनिकों ने एक साथ झुककर आदेश स्वीकार किया। लेकिन सेनापति यही नहीं रुके। उन्होंने आचार्यों के जले हुए घावों से निकले कुछ सूक्ष्म अवशेष, दग्ध त्वचा के छोटे छोटे अंश, एक विशेष अभिमंत्रित कपड़े में सावधानी से बांधे।
इसे भी साथ ले जाओ, उन्होंने सैनिकों को सौंपते हुए कहा, सूर्यपुरा के विद्वानों को दिखाना।
मैं निश्चित होना चाहता हूँ।
उनकी आंखों में कठोरता आ गई कि यह प्रहार वास्तव में उनके ही दिव्यास्त्र से हुआ है या फिर कोई और खेल चल रहा है।
सैनिक बिना एक क्षण गंवाए तुरंत प्रस्थान के लिए मुड़ गए। उनके कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर होती चली गई और जैसे ही कक्ष का द्वार बंद हुआ, वातावरण एक बार फिर गहरे सन्नाटे में डूब गया।
सेनापति और राजवर्धन कुछ देर तक मौन खड़े रहे। दोनों के चेहरों पर गंभीरता स्पष्ट थी, मानो वे आने वाले किसी बड़े संकट की आहट महसूस कर चुके हों।
उस घटना के कुछ ही समय बाद, जब चिकित्सा कक्ष की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में आ गई, सेनापति ने और विलंब करना उचित नहीं समझा। उन्होंने तुरंत आदेश भिजवाया, गुरुकुल के सभी आचार्य तत्काल सभा कक्ष में उपस्थित हों। कुछ ही समय में विशाल सभा कक्ष में गंभीर वातावरण छा गया। दीवारों पर जलती दीपशिखाएं हल्की हल्की डोल रही थीं और उनके प्रकाश में उपस्थित प्रत्येक आचार्य का चेहरा चिंतन और सतर्कता से भरा हुआ था।
सेनापति कक्ष के मध्य में खड़े थे।
स्थिति आप सभी के सामने है, उनका स्वर दृढ़ और स्पष्ट था।
गुरुकुल पर सीधा आघात हुआ है। हमारे तीन प्रमुख आचार्य घायल हैं और जब तक वे पूर्णतः स्वस्थ नहीं होते, हमें इस व्यवस्था को संभालना होगा।
उन्होंने एक एक कर सभी आचार्यों की ओर देखा।
मेरा प्रश्न सीधा है, छात्रों की शिक्षा, उनकी साधना, इसे हम कैसे बाधित होने से बचाएंगे?
कक्ष में कुछ क्षणों का मौन छा गया। फिर एक वरिष्ठ आचार्य आगे बढ़े।
कक्षाएं पूर्णतः बंद रखना उचित नहीं होगा, उन्होंने शांत स्वर में कहा।
इससे छात्रों के मन में भय और भ्रम और बढ़ेगा। हमें सीमित रूप में लेकिन नियमित साधना जारी रखनी होगी।
दूसरे आचार्य ने सहमति में सिर हिलाया।
परंतु सुरक्षा सर्वोपरि होगी, प्रत्येक कक्षा पर विशेष निगरानी रखनी होगी।
धीरे धीरे चर्चा आगे बढ़ने लगी। अंततः निर्णय लिया गया, तीनों घायल आचार्यों का कार्य अस्थायी रूप से अन्य आचार्य अपने ऊपर ले लेंगे।
कक्षाएं सीमित रूप में नियंत्रित वातावरण में पुनः प्रारंभ की जाएंगी और प्रत्येक छात्र की गतिविधि पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। लेकिन एक समस्या अभी भी शेष थी, उन तीन आचार्यों के स्थान को पूरी तरह भरना आसान नहीं था।
तभी सेनापति ने अपनी दृष्टि दरवाजे की ओर उठाई।
उन्हें अंदर बुलाओ।
आदेश मिलते ही तीन सैनिक सभा कक्ष में प्रवेश किए। उनकी चाल स्थिर थी और उनकी उपस्थिति साधारण सैनिकों जैसी नहीं थी। उनके शरीर से निकलती ऊर्जा स्पष्ट रूप से बताती थी कि वे केवल योद्धा नहीं बल्कि उच्च स्तर के साधक भी हैं।
कक्ष में बैठे कई आचार्य उन्हें पहचानते थे। ये तीनों, सेनापति ने कहा, राज्य की विशेष साधना शाखा से हैं।
उन्होंने आगे बढ़कर उन सैनिकों की ओर संकेत किया।
इन तीनों ने अपने सातों चक्र जागृत किए हुए हैं।
साधना में ये किसी आचार्य से कम नहीं।
कक्ष में हल्की फुसफुसाहट फैल गई।
एक आचार्य ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा,
सैनिक और कक्षा का संचालन?
सेनापति का उत्तर तुरंत आया,
यह अस्थायी व्यवस्था है। जब तक हमारे आचार्य स्वस्थ नहीं हो जाते, हमें हर संभव साधन का उपयोग करना होगा।
उनका स्वर अब और भी कठोर हो गया।
ये केवल शिक्षा का प्रश्न नहीं, ये गुरुकुल की स्थिरता का प्रश्न है।
कुछ क्षणों के लिए मौन छा गया।
फिर धीरे धीरे एक एक कर आचार्यों ने सहमति में सिर हिलाया।
स्थिति असामान्य थी और समाधान भी।
सेनापति ने उन तीनों सैनिकों की ओर मुड़कर कहा,
आज से तुम तीनों आचार्य के रूप में कार्य करोगे। अनुशासन, साधना और सुरक्षा तीनों की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर होगी।
तीनों सैनिक एक साथ झुक गए और दृढ़ स्वर में बोले,
आज्ञा सेनापति।
उनकी आवाज में अटल निष्ठा और तत्परता स्पष्ट झलक रही थी।
उसी क्षण कक्ष में जल रहे दीपक की लौ अचानक तीव्रता से कांप उठी,
मानो वह आने वाले अशांत समय की मौन चेतावनी दे रही हो।
अगले कुछ दिनों में गुरुकुल का वातावरण धीरे धीरे फिर से सामान्य दिखाई देने लगा। कम से कम बाहर से देखने पर। कक्षाएं पुनः प्रारंभ हो चुकी थीं। प्रांगण में फिर से साधना की ध्वनियां गूंजने लगी थीं और छात्रों के चेहरों पर लौटता हुआ उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। अनंत रहस्येश्वर मंदिर की घटना, परिषद का रहस्य और आचार्यों पर हुआ भीषण हमला, मानो सब कुछ धीरे धीरे परछाइयों में धंसता जा रहा था। लेकिन ये केवल सतह थी, अंदर बहुत कुछ बदल चुका था। अब जो कक्षाएं चल रही थीं उनका स्वरूप पहले जैसा नहीं था। आचार्यों की जगह अस्थायी रूप से आए वे तीन सैनिक अब केवल अनुशासन ही नहीं बल्कि व्यवहारिक ज्ञान भी सिखा रहे थे, और यही सबसे बड़ा अंतर था। खुले मैदान में चल रही एक कक्षा में दर्जनों छात्र एक घेरे में खड़े थे। बीच में खड़ा सैनिक अपने हाथ में लकड़ी का भाला लिए हुए था। ज्ञान केवल शास्त्रों से नहीं आता, उसका स्वर कठोर था, बल्कि युद्धभूमि से आता है, जहां एक गलती तुम्हारी आखिरी गलती हो सकती है। उसने अचानक पास खड़े एक लकड़ी के पुतले पर प्रहार किया, सीधा उसकी गर्दन के नीचे। यहां उसने इशारा किया, अधिकांश जंगली प्राणियों की एक मुख्य नस होती है। सही प्रहार और लड़ाई खत्म। छात्र ध्यान से देख रहे थे। अगर तुम्हारी भुजा कट जाए, उसने बिना किसी भाव के कहा, तो घबराना मत, अपनी ऊर्जा को नाड़ियों में, इस प्रकार मोड़ों की रक्तस्राव कम हो जाए। उसने हाथ की मुद्रा बदलकर एक तकनीक दिखाई, और यदि अंग पूरी तरह अलग हो जाए। कई छात्रों के चेहरे सख्त हो गए। तो उसे सुरक्षित रखना सीखो, गुरुकुल में ऐसे वैद्य हैं जो उसे पुनः जोड़ सकते हैं, लेकिन तभी जब तुम उसे सही अवस्था में बचा सको। ये ज्ञान कठोर था पर वास्तविक था। छात्रों के भीतर एक नया आत्मविश्वास जन्म ले रहा था। केवल शास्त्र नहीं, अब वे जीवित रहने की कला सीख रहे थे। इसी ज्ञान के प्रभाव से कई छात्रों की साधना में अप्रत्याशित वृद्धि होने लगी, विशेषकर मूलाधार चक्र, डर, जीवित रहने की प्रवृत्ति और शरीर की सीमाओं को समझने के कारण कई छात्रों ने अपने भीतर छिपी उस मूल ऊर्जा को पहली बार महसूस किया। कुछ ने उसे जागृत भी कर लिया। अब वे भी अनंत रहस्येश्वर मंदिर में प्रवेश करने योग्य बनने लगे थे। अर्जुन भी उन्हीं छात्रों के बीच खड़ा था, लेकिन उसका ध्यान केवल सीखने पर नहीं था, वह समझने की कोशिश कर रहा था। हर शब्द, हर तकनीक, हर संकेत, उसके भीतर सवालों का जाल फैल चुका था। एक दिन खुली कक्षा में जब वही सैनिक शास्त्रों और अस्त्रों के मूल सिद्धांत समझा रहा था, अर्जुन ने अवसर देखा। वह आगे बढ़ा। एक प्रश्न है, उसका स्वर शांत था। सैनिक ने उसकी ओर देखा, पूछो। अर्जुन की आंखों में गहराई थी। दिव्यास्त्र और दिव्यांश वास्तव में क्या है? कुछ क्षणों के लिए कक्षा में सन्नाटा छा गया। कई छात्र भी उत्सुक हो उठे। सैनिक ने अर्जुन को कुछ पल तक देखा, मानो वह परख रहा हो कि यह प्रश्न जिज्ञासा से आया है या किसी और कारण से। फिर उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, दिव्यास्त्रों का ज्ञान अत्यंत प्राचीन है। उसकी आवाज में एक गंभीरता थी। हजारों वर्ष पहले इन्हें केवल देवताओं के आशीर्वाद से प्राप्त किया जा सकता था। हर अस्त्र किसी देवता की शक्ति का अंश होता था। छात्र मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे, लेकिन समय बदला। उसने आकाश की ओर देखा। देवताओं ने मनुष्यों के कार्यों में हस्तक्षेप करना कम कर दिया। तब ऋषियों और मुनियों ने स्वयं इस शक्ति को समझने और बनाने का प्रयास किया। उसकी आंखों में हल्की चमक आई। यहीं से शुरू हुआ मानव निर्मित दिव्यास्त्रों का युग। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। ये अस्त्र शक्तिशाली होते हैं, सैनिक ने कहा, परंतु ये असली दिव्यास्त्र नहीं होते। कक्षा में हल्की फुसफुसाहट हुई। अर्जुन के भीतर कुछ जुड़ने लगा। उसे अपने पिछले जन्म के दृश्य याद आए, ऐसे अस्त्र जो रात को दिन में बदल सकते थे, जो आकाश को चीर सकते थे, जो प्रकृति के नियमों को मोड़ सकते थे। और फिर कल रात, वह तुलना साफ थी। तो अर्जुन ने मन ही मन सोचा, कल रात जो मैंने देखा वह केवल प्रतिरूप था, एक अधूरा कमजोर संस्करण, लेकिन फिर भी खतरनाक। वह और प्रश्न पूछना चाहता था, लेकिन सैनिक ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। बस, उसका स्वर अब कठोर हो गया, इससे अधिक जानकारी तुम्हें अभी नहीं दी जा सकती। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ ली, क्यों? सैनिक की आंखें गंभीर हो गईं। क्योंकि यह नियम है, उसने स्पष्ट कहा, जब तक किसी साधक के सातों चक्र जागृत नहीं हो जाते, उसे दिव्यांश और दिव्यास्त्रों के गहन रहस्यों की अनुमति नहीं है। कक्षा में फिर से सन्नाटा छा गया। ये नियम केवल इस गुरुकुल का नहीं, उसने आगे कहा, बल्कि पूरे आर्यावर्त के राज्यों द्वारा मिलकर बनाया गया है। उसने अर्जुन की आंखों में देखते हुए अंतिम बात कही, जिस दिन तुम अपने सातों चक्र जागृत कर लोगे, एक क्षण का विराम, उस दिन तुम्हें ये ज्ञान स्वयं दिया जाएगा। अर्जुन चुप हो गया। उसके पास अभी उत्तर नहीं थे, लेकिन अब उसके पास एक लक्ष्य जरूर था।